समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मनोज, हेलो, गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मनोज, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की।
इंडियन यूरोपियन यूनियन टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सेज उर्सुला वॉन डेर लेन।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, भारत इस वर्ष के अंत तक तपेदिक को समाप्त करने के लिए प्रयासरत।
हैवी रेन एंड स्नोफॉल डिस्टर्ब्स नॉर्मल लाइफ इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। Winter vacation for schools extended till the 6th of March in J&K.
और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about National Science Day. Well, it's National Science Day, a day to celebrate the remarkable power of science and the brilliant minds that push the boundaries of human knowledge. On February 28th, we commemorate the groundbreaking discovery of the Raman effect by the legendary physicist Sir C.V. Raman, a discovery that revolutionized our understanding of light and earned him the Nobel Prize in 1930. And this year's theme is especially exciting, empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for Viksit Bharat.
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 से हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में विज्ञान के महत्व और इसकी भूमिका के बारे में खुद को याद दिलाने का दिन है। ये हमारे युवाओं के बारे में है, ये हमारे भविष्य के वैज्ञानिक, इंजीनियर, नव प्रवर्तक और विचारशील नेता हैं। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित विकसित भारत या इसके दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाता है।
Yes, and now listeners, you might be thinking, what is the Raman effect? Well, the Raman effect happens when light interacts with molecules in a material, like when sunlight hits a glass of water or when a laser beam hits a crystal. But here's the twist: the light gets scattered and it doesn't come back the same way it went in. Normally, when light bounces off something, it just reflects back without changing. But in the case of the Raman effect, the light loses or gains some energy. This energy change happens because the light photons, which are tiny packets of light, give some of the energy to the molecules in the material kind of like a little push or a gentle tug. When this happens, the scattered light has a different wavelength than the light that came in. And that's where the magic happens. Scientists use this shift in wavelength to learn more about the molecular structure of the material. It's Manoj, like a detective using clues to understand the hidden secrets of a substance.
जी हाँ अभिषेक, विज्ञान केवल तथ्यों के बारे में नहीं है, ये जिज्ञासा, अन्वेषण और बदलाव लाने के बारे में है। मैं अपने ज्ञान का उपयोग इस स्मार्ट टिकाऊ दुनिया बनाने में करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष दिन पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और अपने संदेश में उन्होंने कुछ विचार उत्तेजक शब्द साझा किए जिन्हें हम सभी को आत्मसात करना चाहिए।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभाः, अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है।
Yes, and what a profound thought, curiosity, the driving force behind all scientific discovery, is the heart of progress. The Prime Minister reminds us that science and knowledge aren't just about theories and equations, but about finding practical solutions to the challenges we face every day. From technology to health, from the environment to education, science is the key that unlocks the door to a better future for all of us.
अपने संदेश में श्री मोदी ने हमसे विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाए रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल नई खोजें करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये खोजें हमारे समाज के हर कोने तक पहुंचे। एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करें जहां हर युवा मन प्रश्न पूछने, उत्तर खोजने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित हों। विकसित भारत केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है।
Absolutely, and that's the spirit. And speaking of empowering youth, let's talk about the Inspire Manak scheme, a fantastic initiative that aims to engage young minds, especially in class 11 and class 12, encouraging them to innovate and think critically about the world around them. And this Manoj scheme is crucial in nurturing scientific talent at a critical stage in the education, isn't it?
जी, इस पहल पर सरकार का ध्यान भारत के वैज्ञानिक कार्यबल का विस्तार करने और अनुसंधान तथा विकास में इसके वैश्विक नेतृत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। ये युवा प्रतिभाओं को निखारने का एक शानदार अवसर है, और कौन जानता है, अगली बड़ी वैज्ञानिक सफलता यही भारत में एक छात्र से आ सकती है। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल अतीत की खोजों का उत्सव मनाने के बारे में नहीं है, ये आज हो रहे अविश्वसनीय कार्यों को प्रदर्शित करने के बारे में भी है।
Well, of course, indeed, Manoj, and the basic objective of the observation of National Science Day is to spread the message of the importance of science and its application among the people. It is celebrated as one of the main science festivals in India every year with the following objectives. Can we hear them, Manoj?
जी, लोगों के दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में एक संदेश व्यापक रूप से फैलाना। मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, विज्ञान के विकास के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा करना और नई तकनीकों को लागू करना, लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।
Yes, absolutely. And from AI breakthroughs to climate solutions, science is powering India's future. Imagine this: quantum computing, artificial intelligence, geospatial technology and climate research, fields that are changing the way we live, work and think. And India is at the forefront, making major strides in these areas. And today we are celebrating how science and innovation are shaping a future like never before. And the Prime Minister's call to action is clear. Let's use science to tackle problems, drive solutions and build a future that is sustainable, inclusive and technologically advanced. Whether it's advancing in space technology, improving healthcare systems, or tackling climate change, science and innovation are the cornerstones of a better tomorrow. And Manoj, let me ask you a very personal question. Are you a fan of the Indian scientists?
जी हाँ अभिषेक, ये तो सभी को स्वाभाविक रूप से हो जाना चाहिए। फैन, प्रशंसक जिसे कहते हैं।
Of course, are you interested in science in a personal level? Do you take interest in science?
ऐसे मैं ये बात आपको बताऊं, ये बहुत ही पर्सनल बात है। मैं साइंस में बड़ा ही कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन साइंस तो सभी को लुभाता है।
Do you agree that the scientist's contribution to the well-being of a nation is immense?
मानव कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है।
Absolutely.
हाँ, तो अभिषेक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वैज्ञानिक क्रांति का हिस्सा बनने का ये एक रोमांचक समय है। जैसे जैसे दुनिया टिकाऊ समाधान, स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और अभूतपूर्व अनुसंधान की ओर मुड़ रही है, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में अपनी जगह बना रहा है। तो आइए आज हम अपने आसपास के वैज्ञानिक चमत्कारों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। जिन चीजों को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और जुनून के बिना ये संभव नहीं होता। आपकी जेब में मौजूद मोबाइल से लेकर विकसित हो रहे स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता और अंतरिक्ष मिशन तक, जो हमें आश्चर्यचकित करते रहते हैं, ये सब एक प्रश्न के साथ शुरू हुआ और इनके लिए उत्तर खोजने की एक मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है।
Yes, and so to wind up our discussion today, Manoj, let me address all the young scientists, the innovators and the dreamers out there. Keep pushing forward. You are the future of our world and today we celebrate you. Your journey begins with curiosity and who knows, maybe one day your discovery will be celebrated just like Sir C.V. Raman's.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, Kerala decides to install floating solar plants in water bodies to resolve the power crisis in the state and we have a report.
Kerala Cabinet approves the draft to install floating solar plants in water bodies in the state. A study conducted by the Electricity Department estimates that if floating solar panels are installed in suitable water bodies, the state could generate 8,000 megawatts of electricity daily, that is 800 megawatt more than the current demand. Based on the study, the Cabinet has approved the policy. A list of potential locations will be prepared and implementation will take place in collaboration with private entities. Contracts will be awarded based on specific terms and conditions after categorizing the water bodies into different segments such as major dams, lakes and medium-sized water bodies. The guidelines which complement the solar energy policy which is already in place are designed to help Kerala fully tap the potential of reservoirs, backwaters and even water-filled quarries in hosting floating solar projects. Kerala's daily electricity consumption stands at 5,200 megawatts. While the hydropower projects generate 2,096 megawatt, solar energy contributes only 415 megawatt. This creates a significant gap between the production and demand. To address this issue, the state government is planning to expand floating solar plants across various water bodies, including reservoirs, lakes, ponds and backwaters. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, महिला दिवस और एआई क्षेत्र में भारत की मजबूत पहचान बनने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डियर वुमन के नाम से जाने जाने वाली अनुराधा राव का भी उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया, जिनमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली अनुराधा राव का था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में दशकों से पशु कल्याण के प्रति स्वयं को समर्पित कर रही है। 30 दिसम्बर 2018 में श्री मोदी जब द्वीप समूह दौरे पर आए थे, तब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को सम्मान देने के लिए इस द्वीप का नामकरण किया था। ये द्वीप पहले रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये द्वीप न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये द्वीप, जहाँ इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। उस द्वीप की खास बात ये है कि इस द्वीप में डियर वुमन के नाम से जानी जाने वाली अनुराधा राव पिछले 3 दशकों से वन्य जीवों की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने हिरणों, मोरों व अन्य जीवों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया है। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती हैं, हाथों से खाना खिलाती हैं और उनके साथ बातचीत भी करती हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में द्वीप समूह की डियर वुमन के नाम से प्रसिद्ध अनुराधा राव ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में वन्य जीव संरक्षण का कार्य करने वाली ये उनकी चौथी पीढ़ी है। ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये द्वीप निश्चय ही भविष्य में अपनी पहचान बरकरार रखेगा। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
The World Audio Visual and Entertainment Summit Waves is offering an exciting opportunity to creators and storytellers through Waves Explore a Challenge to showcase the vision of India by making YouTube Shorts. All one has to do is to capture India's diversity, authenticity and creative spirit, and the content must be original and created specifically for this challenge. The maximum duration for the vlog is 7 minutes, whereas for short-form videos, it is 1 minute. organized by the Internet and Mobile Association of India in partnership with the Ministry of Information and Broadcasting. The challenge is part of the Create in India Challenges, a flagship initiative under the WAVES, which will be held from the 1st to the 4th of May 2025 at the Jio World Convention Center in the Jio World Gardens, Mumbai. We have more from a correspondent.
This initiative invites participants from 18 and above age group to capture the country's vibrant streets, cultural heritage, scenic landscapes and hidden gems. The locations featured in the video must be within India and entries must be published on your YouTube channel, tagging Waves Explorer and official account of the event. The entries must comply with the YouTube community guidelines. For more information, log in to wavesindia.org. According to sources, over 700 persons have registered for the Explorer Challenge so far, including two from the United Kingdom. The last date for submitting entries is 15th March, so hurry up and contribute in strengthening India's position as a dynamic hub for media and entertainment in the world. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
In business news today, the benchmark domestic equity indices faced a tough session today, with both the Sensex and the Nifty ending in negative territory. The Sensex plunged by 1,414 points to 73,198. The Nifty tumbled 420 points to 22,124. The domestic stock market has experienced a significant correction, with the Sensex losing 16% and the Nifty declining 18% since the peak levels in September last year.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुंबई और दिल्ली दोनों के खाते में 6 अंक हैं, हालांकि अंक तालिका में मुंबई शीर्ष पर है। बेंगलुरु में कल रात गुजरात जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में गुजरात जायंट्स ने 16 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात की कप्तान एशले गार्डनर ने सिर्फ 31 गेंदों पर 58 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
Yes, and now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 28th of February 1948, the last batch of British soldiers left India. The withdrawal of British forces began on the 17th of August 1947, when the first army units and a large contingent of the Royal Air Force sailed from Bombay. Concluding the phased withdrawal, the 1st Battalion of the Somerset Light Infantry took out a ceremonial parade through the streets of Bombay and halted at the Gateway of India.
During the farewell ceremony, guards of honour were provided by the units of the newly formed Indian Army. Both the Indian and British military bands exchanged salutes and played the other's national anthem. The British were presented with parting gifts, an oil painting, the Indian tricolour, and a silver model of the Gateway of India.
Raja Maharaj Singh, the first post-independence governor of Bombay, read messages of farewell and good wishes from Lord Mountbatten and Prime Minister Jawaharlal Nehru.
To the tune of the popular farewell song Auld Lang Syne, translated from Scottish as For Old Time's Sake, the last of the British troops marched out through the Gateway of India and boarded the Empress of Australia for their journey home.
We pay tributes to freedom fighter and first president of sovereign India, Dr. Rajendra Prasad, who died on the 28th of February 1963. A supporter of Mahatma Gandhi, Prasad was imprisoned by British authorities during the Salt Satyagraha and the Quit India movement. Upon independence in 1947, he was elected as president of the Constituent Assembly of India. In 1950, he became the first president of India and encouraged the development of education in India. In 1957, Prasad was re-elected to the presidency, becoming the only president to serve two full terms. He stayed in office for the longest term of around 12 years and later set up new guidelines for parliamentarians, which are still followed. On his passing away, the entire nation mourned the loss, paying glowing tributes to his selfless life, devoted entirely to the service of the people of India. The then Speaker of Lok Sabha, Hukum Singh, had observed,
"A great freedom fighter and an ardent patriot, as President of the Constituent Assembly, he guided its deliberations with patience and foresight. He was the first President of India in very difficult and formative stages. An intellectual endowed with humility and humanism, he had worked among the poor and lowly and understood their difficulties. He maintained the dignity of the office and yet lived a simple and dedicated life. He laid foundations and established traditions worthy of the constitutional head of a state."
In the Rajya Sabha, its chairman, Dr. S. Radhakrishnan, eulogized the noble qualities of Rajan Babu in the following words.
"It may be said of Rajendra Prasad, more truly than of anyone else, that he was a perfect gentleman, the embodiment of the best in Indian life, a symbol of the good Indian. His services to the nation have already become a saga in the history of the emancipation of our country."
We also remember Martyr Sursi, who died on the 28th of February, 1858. She took part in the First War of Indian Independence of 1857, along with her son Bhim Nayak, a prominent Bhil leader of Nimar, Madhya Pradesh. Sursi was captured by the British troops near Saloda on the 8th of February, 1859, following a serious encounter with troops at her command. She was imprisoned and tortured physically and mentally at Mandaleshwar Fort and died in detention on the 28th of February, 1859.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्म दिवस.
Yes, and Lewis Brian Hopkins Jones was born on this day in 1942. He was an English musician and founder of the Rolling Stones. Initially a slide guitarist, he went on to sing backing vocals and played a wide variety of instruments on Rolling Stones recordings and in concerts. Let's listen in to the band's hit track, Painted Black.
I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
आज पुण्यतिथि है कमला कौल नेहरू की. उनका जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में हुआ था. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शीर्ष नेताओं में से एक और देश की प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी. कमला नेहरू को आज भी सौम्यता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाता है. ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया. उन्होंने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी यात्रा में भी भाग लिया था.
Yes, and Ravindra Jain was born on this day in 1944. He was an Indian music composer, lyricist and playback singer. He started his career in the early 1970s by composing for several hit movies. His notable works include Chor Machaya Shor, 1974, Geet Gata Chal, 1975, Chit Chor, 1976, among many others. He composed music for many films and TV shows, including Ramanand Sagar's epic Ramayan, 1987, which became iconic. And he was awarded the Padma Shri, the 4th highest civilian award of the Republic of India, in 2015 for his contribution to arts. Let's listen in to his hit 1975 hit song, Geet Gata Chal.
रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा. सरगम के सात सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया उसे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। रामरिख मनहर के जरिए राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या से मुलाकात रविंद्र जैन के फिल्म करियर को संवार गई।
And U. Srinivas was born on this day in 1969. He was an Indian mandolin player in Carnatic classical music and composer. U. Srinivas was called the Mozart of classical Indian music and he was a child prodigy. He was awarded the Padma Shri in 1998 by the Government of India. He was also awarded the Sangeet Natak Academy Award in 2009, given by Sangeet Natak Academy, which is the National Academy of Music, Dance and Drama in India. Let's listen in to his hit composition, Gaja Vadana, and it's from his 1994 album, Rama Shri Rama.
आज जयंती है प्रसिद्ध कवि लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा की। उनका जन्म 28 फरवरी 1913 को खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए किया। 1934 में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्वराज्य भवन में हिंदी अधिकारी रहे और फिर बॉम्बे टॉकीज बम्बई में गीत लिखे। उन्होंने फिल्मों के गीत लिखे, आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और स्वतंत्र लेखन भी किया। उनके 17 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक जीवनी और अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत और उन्होंने बीआर चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत की कथा वस्तु, लेखन परामर्श और गीत रचना की।
यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका परिणाम क्या होगा गंगा पुत्र?
आपकी ये आशंका आधार ही नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है।
भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
Yes, and Henry James passed away on this day in 1916. He was an American-British author. He is regarded as a key transitional figure between literary realism and literary modernism and is considered by many to be among the greatest novelists in the English language. The Portrait of a Lady, The Ambassadors, The Wings of the Dove and The Golden Bowl are his best known works.
आज पुण्यतिथि है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य बलबीर सिंह खुल्लर की। उनका जन्म 8 अगस्त 1942 को संसारपुर गांव में हुआ था। उन्होंने भारतीय टीम में इनसाइड फॉरवर्ड के रूप में प्रतिष्ठा हासिल की और बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया। बलबीर सिंह खुल्लर सन 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे। और अब श्रोताओं, समय हो चला है।
Yes, sir. Just before that, I'd like to add one more personality, Manoj. C.K. Vinith was born on this day in 1988. Commonly known as C.K. Vinith, he is an Indian professional footballer who plays as a forward for Super League Kerala club Thrissur Magic FC.
और आज पुण्यतिथि है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की। उनका जन्म 18 नवंबर 1888 को जिला चित्रदुर्ग मैसूर राज्य में हुआ था। उन्हें आधुनिक योग का पिता कहा जाता है। और अब कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति दीजिए श्रोताओं। तो अभिषेक मुखोपाध्याय और मनोज को अनुमति दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।